प्रिय मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 18 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एकेडमी अगले साल के 15 से 29 मार्च के बीच में जो 15 दिन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करने जा रही है उसके लिए पल्लव त्यागी जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय के तहत मैं लद्दाख के बारे में कुछ बातें करूंगा और लद्दाख को मैंने क्यों चुना है उससे संबंधित एक न्यूज़ आई है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आइए पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो महत्वपूर्ण घटना कल के न्यूज़ में आपने सुनी होगी आज के अखबारों में भी वह छपा है वह श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में गोतबाया राजपक्षे विजयी हुए हैं यानी कि अभी जो राष्ट्रपति वहां थे वो पराजित हो गए हैं और उनकी जगह अब नए राष्ट्रपति आए हैं। मैंने इस विषय को इसलिए खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत लिया है क्योंकि भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो कितने निकट के संबंध हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ था और उसके कुछ ही समय बाद 1948 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था और हमारे तो बड़े ऐतिहासिक संबंध रहे हैं रामचरितमानस रामायण वगैरह के प्रसंग आप सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। तो अभी तक जो वहां के राष्ट्रपति थे वो बेसिकली यहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो प्रो इंडिया थे यानी कि वो भारत के पक्ष में थे। इनफैक्ट सच पूछिए तो जो राष्ट्रपति बने थे उससे ठीक पहले के जो राष्ट्रपति थे वो प्रो चाइना थे यानी कि चीन की तरफ उनका झुकाव जबरदस्त रूप से था। तो जब चीन का झुकाव जबरदस्त रूप से हुआ तो चीन ने घुसपैठ करनी शुरू की। उस तरह से घुसपैठ नहीं मतलब एक आर्थिक सहायता अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाना और चीन के पास जो संबंधों को घनिष्ठ बनाने का जो सबसे बड़ा हथियार है या कह लीजिए उपकरण साधन है वो है कि वहां धन डंप करो कि वहां पता लगा कि एक बिल्डिंग बना करके और उसको डोनेट कर दिया वहां के बंदरगाह का डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी ले ली फलाना फलाना कर दिया यानी कि वहां खूब इन्वेस्टमेंट करो इन्वेस्टमेंट करके कर्ज से उस देश को लाद दो। ये चीन की पॉलिसी भी है उस देश को कर्ज से लाद दो और इसके बाद जब कर्ज से वह देश यूं कह लीजिए कि बिल्कुल उसकी कमर टूट जाए तो फिर बस अपनी बातें आप मनवाओ। तो ये चीन की नीति ही है जो दूसरे देशों के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। तो उस समय चीन की इसी नीति के विरोध में आप कह लीजिए कि उस समय के चीन के नागरिकों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया था लेकिन स्थितियां आप जानते हैं कि बदलती रहती हैं और अब जब फिर से नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है गोतबाया जो राजपक्षे राष्ट्रपति बन गए हैं तो इनके बारे में जो खबर है वो यही है कि वो प्रो चाइना है मतलब इनका जो झुकाव है चीन की तरफ ज्यादा है। अब आप देखिए कि जब ये खबर आप सुनेंगे कि उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि अगर आप थोड़े से भी लंबे समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। अगर वही पहले वाले ही राष्ट्रपति चुनकर के आ जाते तो हमारे लिए ये खबर नहीं रहती कि ठीक है हमारे संबंध जैसे चल रहे हैं वैसे चलते ही रहेंगे और मजबूत होंगे। लेकिन अब उन संबंधों के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती इस मायने में कि अब चीन से उनकी निकटता बढ़ेगी और भारत के लिए श्रीलंका और चीन की निकटता आप यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा करने वाली होगी। चीन वैसे भी पूरे के पूरे आप देखते हैं हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर जिसे हम प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कहते हैं उसमें लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जो श्रीलंका है वो तो सीधे सीधे हिंद महासागर में ही है और हिंद महासागर भारत के लिए कितना महत्व रखता है इसके बारे में हम सब बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भारत थोड़ा सा चिंतित हो। तो भारत के सामने यूं कह लीजिए कि चाइना के साथ रिलेशन को लेकर के और यहां तक कि खासकर श्रीलंका के साथ के रिलेशन को लेकर के फिर एक चुनौती आई है। चाइना के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं जो चीन और श्रीलंका के संबंध होंगे अगर भारत उसके विरोध में कहीं थोड़ा बहुत भी खड़ा होगा या श्रीलंका को ज्यादा सहयोग देने की बात करेगा तो फिर वो चीन की नाराजगी का कारण बनेगा। जैसे आप देखिए कि अभी भी भारत और चीन के संबंधों में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान है भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत और जो श्रीलंका के संबंध है वो फिर से चीन और भारत के संबंधों के तनाव का कारण बन जाए। अब देखिए कि क्या स्थितियां होती हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वहां जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में 2020 का जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें भारत और श्रीलंका और साथ ही भारत और मालदीव, इनके संबंध थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो गए। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है। मालदीव शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं जितना कि श्रीलंका हो गया है। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं श्रीलंका के बारे में देना चाहूंगा, क्यों भारत के साथ उसके संबंध इतने मायने रखते हैं। उसका एक दूसरा रीजन भी है, मैं एक हिंद महासागर में उसकी जो लोकेशन है वो आपको बता ही चुका हूं कि दोस्तों अभी भी जो श्रीलंका है वहां जो तमिल आबादी है उसमें बहुत बड़ी संख्या, आप यूं कह लीजिए कि भारतीय तमिल की भी है, और उसको लेकर के भारत और श्रीलंका के संबंध बीच में काफी तनावपूर्ण भी हो गए थे। और वहां जो धर्म है वो तो आप जानते हैं कि 75% ऑलमोस्ट 3/4 बुद्धिस्ट हैं, तो भारत का बुद्ध आप कह लीजिए कि बौद्ध धर्म से किस तरह का संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है। आबादी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग 3 करोड़ के आसपास की ही आबादी होगी। और ये जो श्रीलंका है बकायदे जो सार्क देश है, सार्क जो संगठन है उनके संस्थापकों में से रहा है। तो दोस्तों चूंकि आज मुख्य विषय के तहत मैंने इस नहीं लिया है तो मैं समझता हूं कि इस पर इतना ही बात करना फिलहाल पर्याप्त होगा। एक न्यूज आपने और सुनी होगी और वो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल इस बात की घोषणा की है कि अभी जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके लिए वो पुनर्याचिका दायर करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि आप अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। पहली बात। दूसरी बात, उसने सीधे सीधे कह दिया है कि जो निर्णय के तहत कहा गया था कि 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए अलग से दी जाए, तो इस संस्था ने कह दिया है कि हमें वह जमीन नहीं चाहिए, हम वह जमीन नहीं लेंगे। तो यह एक उन्होंने कल घोषणा की है। खासकर अभी आप देखते रहिए कि यह क्या होता है, लेकिन यूं कह लीजिए कि इतने लंबे समय से चले आ रहे इतने तनावपूर्ण विवाद का निपटारा जिस शांतिपूर्ण तरीके से, जिसके केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हो गया था, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें फिर से खुदाई करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि इसकी वजह से फिर, या यूं कह लीजिए कि जख्म हरे हो जाएं और स्थिति कहीं फिर से खराब होने की ओर बढ़ने लगे। तो इसको लेकर के कुछ जो समाजशास्त्री हैं वो थोड़े से चिंतित जरूर हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि भारतीय जनता ने, मैं भारतीय जनता की बात कर रहा हूं, यहां संप्रदाय और धार्मिक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े खुले मन से इसे स्वीकार किया है, तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि ये जो पुनर्याचिका दायर होगी शायद देश के माहौल को इसी तरह से शांति जो बनी हुई है उसमें भंग करने की स्थिति पैदा नहीं करेगी। लेकिन एक खबर के रूप में आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, इसके लिए ही मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा की है। मित्रों अब हम आते हैं लद्दाख के ऊपर। लद्दाख के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। आप जानते हैं कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही अंग था। बाद में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया और फिर जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया तो बकायदे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोनों में फर्क ये रहा कि लद्दाख पूर्णतः केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्णतः का मतलब यह है कि वहां विधानसभा नहीं है, पूर्णतः शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, और जो जम्मू कश्मीर है वह भी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां विधानसभा भी होगी। ठीक उसी तरह से जैसे आप देखिए कि पुद्दुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी विधानसभा है, और जो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली है वहां भी विधानसभा है लेकिन वह भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर भी इसी तरह का प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब जानते हैं कि लद्दाख में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि उन्हें ऑटोनोमी दी जाए और उनकी ये मांग पूरी हो गई, और जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो लद्दाख ने बहुत खुले मन से बड़े उत्साह के साथ सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और बकायदे 31 अक्टूबर को, यानी कि इसी वर्ष 31 अक्टूबर को विधिवत तरीके से उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दोस्तों ये जो लद्दाख है ये ऊंचाई पर है और बहुत ठंडा प्रदेश है, आबादी ज्यादा नहीं है, सोच के देखिए कि लगभग 3 लाख की आबादी है, जो इसकी राजधानी है वो लेह है, और इसके दो ही इम्पोर्टेंट सिटी हैं, शहर हैं, लेह और कारगिल, बस ये दो ही इम्पोर्टेंट हैं। जो सबसे बड़ी जो यहाँ आर्थिक व्यवस्था का जो केंद्र हो सकता है या भारत अगर उसका विकास करता है तो जो मदद मिल सकती है वो है हाइड्रो यानी कि जल विद्युत और सोलार यानी कि सौर विद्युत। ये दो के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर यहाँ लगाए जाते हैं तो भारत की विद्युत आपूर्ति के मामले में यह क्षेत्र जो है ना बहुत मदद कर सकता है। और बकायदे केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है कि हाइड्रो और सोलर दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट वहाँ लगाए जाने शुरू हो गए हैं। अभी मैंने जो लद्दाख को चुना है आज के मुख्य विषय के रूप में, उसके पीछे रीजन ये है कि कल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ लद्दाख के लिए बकायदे एक विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया है। विंटर ग्रेड डीजल, ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक ऐसा डीजल जो ठंड के दिनों में भी जमेगा नहीं। आप जानते हैं कि अगर ठंड बहुत ज्यादा हुई तो फिर जो लिक्विड है, लिक्विड पदार्थ होते हैं, वो जमने शुरू हो जाते हैं, और डीजल भी लिक्विड है। तो अब जो विंटर ग्रेड डीजल जो कल शुरुआत की गई है, जो लॉन्च कर दिया गया है, दो तीन चीजें आपको बस मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये है कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह जमेगा नहीं, और जो लद्दाख का जो टेम्परेचर है कभी कभी गिर करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसकी जो क्षमता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए कि जैसे आप वैसे सुनने में छोटी सी बात लगती है कि डीजल जमेगा नहीं, लेकिन अगर आप वहां ऐसा डीजल प्रोवाइड कर देते हैं कि ठंड के दिनों में भी वो उसका भरपूर उपयोग कर सकेंगे, तो सोच करके देखिए कि वहां के जीवन पर इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, वहां की अर्थव्यवस्था पर इसके कितने सकारात्मक प्रभाव होंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीजल पर बेस्ड है, वो काम करते रहेंगे। जो इंडस्ट्री है, मशीनरी है, वो डीजल से चलने वाली है, तो वो बकायदे काम करती रहेंगी। लद्दाख के क्षेत्र में एक टूरिज्म उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार होता है, तो अगर मोटर गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, कार ही नहीं चलेंगी, तो स्वाभाविक है कि टूरिज्म उस समय बंद हो जाएगा। तो अब चूंकि वहां एक ऐसा डीजल आ गया है जो ठंड के दिनों में भी पर्याप्त रूप से काम करता रहेगा, तो टूरिज्म भी लगातार वहां ठंड के दिनों में भी जारी रह सकेगा। तो वहां के जीवन की दृष्टि से ये जो विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया है, जो शुरू वहां सप्लाई की गई है, ये बहुत मायने रखता है। ये पहली खबर। जो दूसरी है वो ये है दोस्तों कि इसे इन्वेंट किया किसने है, तैयार किसने किया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, उसका जो पानीपत ब्रांच है जो हरियाणा में है, उसने ये डीजल तैयार किया है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो दोस्तों इसकी एक खासियत और भी है कि ये जो डीजल तैयार किया गया है, विंटर ग्रेड डीजल, ये बकायदे जो BS6 ग्रेड है, भारत स्टैंडर्ड 6 ग्रेड, इसके अनुकूल है। थोड़ी सी चर्चा में इसके बारे में भी यहाँ इस रूप में करना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब हुआ। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे डिसीजन दिया था कि मार्च 2020 के बाद ऐसी गाड़ियां बिल्कुल नहीं बिकेंगी जिनका जो इंजन है वो BS6 के अनुकूल ना हो। अभी तक BS4 वाली इंजन है, BS4 वाले इंजन बिकने बंद हो जाएंगे मार्च 2020 के बाद, अब कुछ ही महीने रह गए हैं। तो ये जो डीजल है ये इस तरह के इंजन में भी काम करेगा जो BS6 वाले होंगे। और BS6 वाले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वो बहुत ही सिंपल सी बात है कि BS6 का मतलब है कि सामान्य रूप में कि जो इंजन है गाड़ी के उसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा दी जाएंगी, सोफिस्टिकेट की इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होंगी जो डीजल से जो पोल्यूशन निकलता है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगी। और ये जो BS6 है ये बकायदे यूरोप में चल रहा है, और ये मान लीजिए कि अप्रैल से भारत में भी लगभग ये यूरोपीय मानक लागू हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो शहर में प्रदूषण होता है गाड़ियों के कारण वह कितना कम हो जाएगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, लद्दाख के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज उनकी संख्या काफ़ी कम है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दो मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं, वर्षा पवार, रचना कुमारी और प्रशून त्रिपाठी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।